क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने का सोच रहे हैं? बहुत अच्छा इरादा है, एंकर ट्राई कीजिए ना, ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। सबसे पहली बात, ये बिल्कुल फ्री है। दूसरी बात, इसमें इतने सारे टूल्स हैं जिससे आप अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट कर सकते हैं। और तीसरी बात, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं जिससे इसे Spotify और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। तो देर किस बात की, डाउनलोड कीजिए ये फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm। आज ही बनाइए अपना पॉडकास्ट।
जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। अब तक इस अध्याय से हमने 36 श्लोक पढ़े हैं। जो पिछली बार हमने अंतिम श्लोक पढ़ा था, उसका अर्थ ये था कि आपने कितने भी पाप क्यों न किए हों, आप पापियों में सबसे अधिक पाप करने वाले पापी क्यों न हों, तत्व ज्ञान आ जाने से सभी पापों का नाश हो जाता है, जैसे कि एक दिया जलने से वर्षों का अंधकार मिट जाता है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति मुक्ति के लिए आवश्यक है। तो अगला श्लोक लेने से पहले एक बार दोहरा लेते हैं। जो यज्ञ का अवशेष खाते ब्रह्म को पाते सभी, परलोक तो क्या यज्ञ त्यागी को नहीं यह लोक भी। बहुभांति से यूं ब्रह्म मुख में यज्ञ का विस्तार है, होते सभी हैं कर्म से यह जानकर निस्तार है। धन यज्ञ से समझो सदा ही ज्ञान यज्ञ प्रधान है, सब कर्म का नित ज्ञान में ही पार्थ पर्यवसान है। सेवा विनय प्रणिपात पूर्वक प्रश्न पूछो ध्यान से, उपदेश देंगे ज्ञान का तब तत्वदर्शी ज्ञान से। होगा नहीं फिर मोह ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध विवेक से, तब ही दिखेंगे जीव मुझ में और तुझ में एक से। तेरा कहीं यदि पापियों से घोर पापाचार हो, इस ज्ञान नैया से सहज में पाप सागर पार हो। तो अगला श्लोक प्रारंभ करती हूं, 37वां। यथैधांसि समिद्धो अग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते यथा। अर्थात हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। तो अर्थ है कि तत्व ज्ञान होने पर अनेक जन्मों के संचित कर्म सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, कारण कि सभी संचित कर्म अज्ञान के आश्रित रहते हैं, अतः ज्ञान होते ही वे नष्ट हो जाते हैं। तत्व ज्ञान होने पर कर्तृत्वाभिमान भी नहीं रहता, अतः सभी क्रियमाण कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फलजनक नहीं होते। प्रारब्ध कर्म का घटना अंश तो जब तक शरीर रहता है तब तक रहता है, परंतु ज्ञानी पर उसका कोई असर नहीं पड़ता, कारण कि तत्व ज्ञान होने पर भोक्तित्व नहीं रहता, भूख नहीं रहती, अतः अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सामने आने पर वह सुखी दुखी नहीं होता। इस प्रकार तत्व ज्ञान होने पर संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों कर्मों से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। कर्मों से अपना संबंध न रहने से कर्म नहीं रहते, भस्म रह जाती है, अर्थात सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। अब आगे कहे श्लोक के पूर्वार्ध में तत्व ज्ञान की महिमा बताते हुए उत्तरार्ध में
कर्मयोग की विशेष महत्ता प्रकट करते हैं भगवान।
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मने विन्दति।
अर्थात इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है वह कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। तो यहां यह पद मनुष्य लोक का वाचक है क्योंकि सबकी सब पवित्रता इस मनुष्य लोक में ही प्राप्त की जाती है। पवित्रता प्राप्त करने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में ही है, ऐसा अधिकार किसी अन्य शरीर में नहीं है। अलग अलग लोकों के अधिकार भी मनुष्य लोक से ही मिलते हैं। तो संसार की स्वतंत्र सत्ता को मानने से तथा उससे सुख लेने की इच्छा से ही संपूर्ण दोष पाप उत्पन्न होते हैं और तत्व ज्ञान होने पर जब संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती तब संपूर्ण पापों का सर्वथा नाश हो जाता है और महान पवित्रता आ जाती है। इसीलिए संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई दूसरा साधन है ही नहीं। तो संसार में यज्ञ दान तप पूजा व्रत उपवास जप ध्यान प्राणायाम आदि जितने साधन हैं तथा गंगा यमुना गोदावरी आदि जितने भी तीर्थ हैं वे सभी मनुष्य के पापों का नाश करके उसे पवित्र करने वाले हैं, परंतु उन सब में भी तत्व ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई भी साधन तीर्थ आदि नहीं है क्योंकि वे सब तत्व ज्ञान के साधन हैं और तत्व ज्ञान उन सब का साध्य है। तो जिस भी किसी चीज का संसार से संबंध है सांसारिक है उससे पूर्णतः पवित्रता प्राप्त नहीं होती। ज्ञान से आत्मा की शुद्धि होती है। तो भगवान तो महापुरुषों के भी महापुरुष हैं, अतः वे अर्जुन को किसी दूसरे महापुरुष के पास जाकर ज्ञान सीखने के लिए कैसे कह सकते हैं। तो आगे इसी अध्याय के अगले श्लोक में भगवान ने कर्म योग की प्रशंसा करके अर्जुन को समता में स्थित होकर युद्ध करने की स्पष्ट रूप से आज्ञा दी है। कहते हैं अपवित्रता संसार के संबंध से आती है और तत्व ज्ञान होने पर अपवित्रता रहने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए ज्ञान में किंचित मात्र भी अपवित्रता जड़ता का विकार नहीं है। इसीलिए शिक्षा और ज्ञान पर हमेशा महत्व दिया जाता है। तो अब आगे के श्लोक में ज्ञान प्राप्ति के पात्र का निरूपण करते हुए भगवान कहते हैं
श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम् लब्ध्वा परां शान्तिम् चिरेणाधिगच्छति।
यानी जितेंद्रिय जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। परमात्म शांति तत्काल अनुभव न होने का कारण है जो वस्तु अपने आप में है उसको अपने आप में न ढूंढकर बाहर दूसरी जगह ढूंढना। अब परम शांति प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है परंतु मनुष्य परम शांति स्वरूप परमात्मा से तो विमुख हो जाता है और सांसारिक वस्तुओं में शांति ढूंढता है। इसलिए अनेक जन्मों तक शांति की खोज में भटकते रहने पर भी उसे शांति नहीं मिलती। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में शांति मिल भी कैसे सकती है। तत्व ज्ञान का अनुभव होने पर जब दुख रूप संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब स्वतः सिद्ध परम शांति का तत्काल अनुभव हो जाता है। तो यहां श्रद्धा वाल्लभते ज्ञानम से तात्पर्य है श्रद्धा विश्वास और विवेक की आवश्यकता सभी साधकों के लिए है। कर्म योग तथा ज्ञान योग में विवेक की मुख्यता है और भक्ति योग में श्रद्धा विश्वास की मुख्यता है। तो आरंभ में तत्व ज्ञान है, ऐसी श्रद्धा होगी तभी साधक उसकी प्राप्ति के लिए साधन करेगा। तो अब जो ज्ञान प्राप्ति का अपात्र है, ऐसे विवेकहीन संशयात्मा मनुष्य की भगवान आगे के श्लोक में निंदा करते हुए कहते हैं,
अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः।
अर्थात विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए न तो यह लोक हितकारक है, न परलोक हितकारक है और न सुख ही है। तो साधक का लक्षण है खोज करना। यदि वह मन और इंद्रियों से देखी बात को ही सत्य मान लेता है तो वो वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। तो साधक को निरंतर आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। जैसे रास्ते पर चलते समय मनुष्य यह ना देखे कि कितने मील आ गए, प्रत्युत यह देखे कि कितने मील अभी बाकी पड़े हैं। तो मतलब ये ना सोचे कि उसने कितना सीख लिया, ये सोचे कि कितना सीखना अभी, कितना ज्ञान प्राप्ति अभी बाकी है। स्पिरिट टू लर्न शुड ऑलवेज रिमेन, सीखने की इच्छा। ऐसे ही साधक यह ना देखे कि कितना जान लिया और अपने जाने हुए पर संतोष न करे, प्रत्युत जिस विषय को अच्छी तरह नहीं जानता उसे जानने की लगातार चेष्टा करता रहे। इसलिए संशय के रहते हुए कभी संतोष नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर साधक का संशय संत महात्माओं से अथवा ग्रंथों से किसी न किसी प्रकार से दूर हो ही जाता है। संशय दूर करने वाला कोई न मिले तो भगवत कृपा से उसका संशय दूर हो जाता है। तो ज्ञान हो तो संशय मिट ही जाएगा और श्रद्धा हो तो भी संशय मिट जाएगा, परंतु ज्ञान और श्रद्धा ये दोनों ही न हो तो संशय नहीं मिट सकता। इसलिए जिस संशयात्मा मनुष्य में न तो ज्ञान है, विवेक है और न श्रद्धा ही है, अर्थात जो न तो खुद जानता है और न दूसरे की बात मानता है, उसका पतन निश्चित है। तो भगवान ने यहाँ 33वें श्लोक से ज्ञान योग का प्रकरण आरंभ करते हुए ज्ञान प्राप्ति का उपाय तथा ज्ञान की महिमा बताई है। जो ज्ञान गुरु के पास रहकर उनकी सेवा आदि करने से होता है, वही ज्ञान कर्म योग से सिद्ध हुए मनुष्य को अपने आप प्राप्त हो जाता है, ऐसा बताकर भगवान ने ज्ञान प्राप्ति के पात्र अपात्र का वर्णन करते हुए प्रकरण का अब उपसंहार किया है। तो अब प्रश्न होता है कि सिद्ध होने के लिए कर्मयोगी को क्या करना चाहिए। अब इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं।
योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवंतं न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय।
अर्थात हे धनंजय, योग समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। तो कर्मयोगी का उद्देश्य स्वरूप बोध को प्राप्त करने का होता है, इसलिए वह सदा स्वरूप के परायण रहता है। उसके संपूर्ण कर्म संसार के लिए ही होते हैं, सेवा तो स्वरूप से ही दूसरों के लिए होती है, शरीर से ही होती है, खाना पीना सोना बैठना आदि जीवन निर्वाह की संपूर्ण क्रियाएं भी दूसरों के लिए ही होती हैं, क्योंकि क्रिया मात्र का संबंध संसार के साथ है, स्वरूप के साथ नहीं। न कर्माणि निबंधन्ति, यानी अपने लिए कोई भी कर्म न करने से कर्मयोगी का संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह सदा के लिए संसार बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। कर्म स्वरूप से बंधन कारक नहीं है। कर्मों में फलेच्छा, ममता, आसक्ति और कर्तृत्व अभिमान ही है जो बांधने वाला है। तो अब भगवान कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा संशय का नाश होता है और समता के द्वारा कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। तो अब आगे के श्लोक में भगवान ज्ञान के द्वारा अपने संशय का नाश करके समता में स्थित होने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। तस्माद् ज्ञान संभूतम् हृतस्थम् ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनम् संशयम् योगम् आतिष्ठो तिष्ठ भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने को संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़े हो जा, उत्तिष्ठ। तो अर्जुन के हृदय में संशय था, युद्ध रूप घोर कर्म से मेरा कल्याण कैसे होगा और कल्याण के लिए मैं कर्म योग का अनुष्ठान करूं अथवा ज्ञान योग का। इस श्लोक में भगवान ने इस संशय को दूर करने की प्रेरणा दी है, क्योंकि संशय के रहते हुए कर्तव्य का पालन ठीक तरह से नहीं हो सकता। तो अर्जुन तो युद्ध को पाप समझते थे, इसलिए भगवान अर्जुन को समता में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि समता में स्थित होकर युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा। संसार में रात दिन अनेक कर्म होते रहते हैं, पर उन कर्मों से राग द्वेष न होने पर हम उन संसार के कर्मों से बंधते नहीं हैं, निर्लिप्त रहते हैं। जिन कर्मों में हमारा राग या द्वेष हो जाता है उन्हीं कर्मों से हम बंधते हैं, मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। तो अब अपने स्वरूप को देखें तो उसमें समता स्वतः ही सिद्ध है। विचार करें कि प्रत्येक कर्म का आरंभ होता है और समाप्ति होती है, उन कर्मों का फल भी आदि और अंत वाला होता है, परंतु स्वरूप निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। कर्म और फल अनेक होते हैं पर स्वरूप एक ही रहता है। अतः कोई भी कर्म अपने लिए न करने से और किसी भी पदार्थ को अपना और अपने लिए न मानने से जब क्रिया पदार्थ रूप संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब स्वतः सिद्ध समता का अपने आप अनुभव हो जाता है। तो अब इसके साथ ही भगवद गीता के चौथे अध्याय का समापन हुआ। अगला यानी पांचवा अध्याय लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत रहूंगी कल। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहती हूँ। जय श्री कृष्ण।